हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। झलक ने तुरंत 20,000 रुपए अपनी पहली किश्त के रूप में आर्यन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। तब झलक के थैंक यू पर आर्यन ने भीतर से सोचते हुए कहा, काश मैं तुम ये जान पाती कि एक सच्चे आशिक का दिल तुम्हारे सामने किस तरह से टूटा है। फिलहाल अपने दुख को चेहरे पर जाहिर न करते हुए आर्यन मुस्कुराते हुए झलक से बातें कर रहा था कि अचानक आर्यन का फोन बज उठा। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता धीरज रायचंद थे। फोन आने पर आर्यन के चेहरे पर अलग तरह के इमोशंस उभर आए। उसने जल्दी से कहा, ठीक है पापा, मैं जल्दी ही वहां पहुंचूंगा। झलक ने उसकी चिंता देखी और कहा, तुम्हें जाकर अपना काम संभालना चाहिए। मैं मिस्टर खुराना के साथ डिस्चार्ज होकर एक हफ्ते में मुंबई आऊंगी और तुमसे मिलूंगी, परेशान मत होना। आर्यन ने दो बार उसके हाथ थपथपाए और कहा, अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तुरंत कॉल करना। आर्यन वहां से वापस जाने लगा। झलक मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच आर्यन, मेरे अच्छे दोस्त बनने के लिए। आर्यन ने तिरछा सा मुस्कुराया, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो एक टूटा हुआ बेबस आशिक लग रहा था। उसने अपनी आंखें आंसू पोंछे और हल्की सी स्माइल करते हुए चला गया। इसी बीच सिद्धार्थ खुराना कमरे में आया। वो झलक के लिए खाना लेकर आया था। जैसे ही उसने देखा कि झलक के हाथों में वो अंगूठी है, उसके तेवर पूरी तरह बदल गए। लेकिन वो झलक से किस आधार पर कुछ पूछ सकता था? कहीं न कहीं सिद्धार्थ के मन में शंका जाग उठी थी। उसे लगने लगा कि शायद आर्यन रायचंद का प्रपोजल झलक ने कबूल कर लिया है, तभी तो वो अंगूठी उसके पास है। ये महसूस करते ही सिद्धार्थ का दिल हजार टुकड़ों में टूट गया। वो पूरी तरह से टूटे हुए सा लग रहा था। भारी कदमों के बीच वो सीधे झलक के पास गया और उसके हाथ से वो अंगूठी साइड पर रखकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। चूंकि झलक के दोनों हाथ काफी ज्यादा चोटिल हो चुके थे, वो पूरी तरह से अपने हाथ मोड़ नहीं सकती थी, इसलिए सिद्धार्थ ने जाकर उसे खाना खिलाना शुरू किया। झलक ने भी एक अच्छे बच्चे की तरह सिद्धार्थ के हाथों से खाना खाना शुरू किया। खाना खिलाने के दौरान झलक को अचानक थोड़ा फुर्सत मिली। उसने ग्लास पानी लिया और अपनी पीठ हल्का सा टिकाया। तब तक झलक ने सिद्धार्थ को धन्यवाद कहा, मिस्टर खुराना, अगर आप आज समय पर नहीं आते तो शायद मैं अब तक भेड़ियों का खाना बन चुकी होती और आपके हाथों से भोजन नहीं कर रही होती। मुझे भेड़ियों का खाना बनने से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर झलक ने सिद्धार्थ का जल्दी ही शुक्रिया अदा किया। लेकिन सिद्धार्थ की नज़रें बार बार उस अंगूठी पर जा रही थीं जो आर्यन ने झलक को दी थी। सिद्धार्थ ने अपने डार्क इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करते हुए झलक को खाना खिलाने के बाद उसे दवाई दी। दवाई के नशे में झलक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वो गहरी नींद में सो गई। झलक के सोते ही सिद्धार्थ का मन चाह रहा था कि वो अंगूठी कहीं फेंक दे, जैसे डस्टबिन में डाल दे। लेकिन अगर झलक उठकर पूछे कि ये अंगूठी कहाँ है तो वो क्या जवाब देगा? उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि अंगूठी झलक के पास रहे। कुछ सोचकर उसने हाथ झटक दिया और झलक के चेहरे को देखकर वहां से बाहर निकल गया। तुरंत उसने रौनित को निर्देश दिया कि फटाफट आर्यन के बारे में सारी खबरें इकट्ठी कर ली जाएं। कहीं न कहीं सिद्धार्थ को तेज लग रहा था कि आर्यन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसीलिए वो झलक के सामने आर्यन का असली चेहरा दिखाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर आर्यन रायचंद मुंबई में अपनी कंपनी पहुंचा। उसके पिता और बहन उसके सामने खड़े थे। पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी बहन ने तुरंत पूछा, क्या झलक के बारे में कुछ पता चला? वो कैसी है? उसकी तबीयत कैसी है? आर्यन की आंखों में झलक का नाम आ गया और एक अनचाहा दर्द उभरा। उसने कहा, वो अब काफी हद तक ठीक है, उसकी जान बच गई है, कुछ दिन बाद वो वापस शहर में आ जाएगी। सिद्धार्थ खुराना का नाम सुनकर मीरा के चेहरे पर एक अजीब सा रंग छा गया। उसे याद आया कि उसने गांव में सिद्धार्थ के साथ काफी क्वालिटी टाइम बिताया था। हालांकि वो थोड़ी डर भी रही थी, लेकिन जितना वो उसे जानती थी उससे वो करीब आना चाहती थी। धीरे धीरे मीरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सिद्धार्थ की ओर मेरी शादी हो सके। मैं सिद्धार्थ को बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर धीरज जी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने गुस्से में अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो? मैं तो समझता था कि ये नालायक प्लेबॉय आर्यन है जिसने पूरे शहर में हमारा नाम बदनाम किया। अब तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? एक पल को अपने पिता को ऐसा कहते हुए देखकर आर्यन तुरंत आगे आया। उसने कहा, डैड, कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। आज तक आपने हमारी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की। रायचंद परिवार में केवल हम दो ही हैं। अगर आपको हमारी खुशियों की परवाह नहीं है तो आप हमारा गला क्यों नहीं काट देते? अब जैसे ही आर्यन, जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, झलक के इनकार के बावजूद अपने पिता पर पूरी तरह से गुस्सा हो उठा, वो बोला, आपने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा कभी नहीं सोचा। आर्यन की बात सुनकर धीरज पूरी तरह से कुर्सी पर बैठते से चले गए। तभी मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने पिता से कहा, आई एम सॉरी डैड, मेरा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी पसंद का इजहार कर रही थी। अगर आप मना करेंगे तो मैं सिद्धार्थ खुराना को आंखों उठाकर भी नहीं देखूंगी। हालांकि ये कहते हुए उसका दिल पूरी तरह से बेईमान हो रहा था, लेकिन अपने पिता को कंट्रोल करने के लिए उसने ये कहा। वही आर्यन भी तुरंत आगे बढ़ा और बोला, आई एम सॉरी डैड, मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। उसके बाद वो मीरा की ओर देखकर बोला था, मीरा, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ की सगाई पहले ही आकांक्षा से हो चुकी है, इसलिए किसी एंगेजमेंट के बारे में सोचना किसी भी हद से ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी पसंद की कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कोई सिद्धार्थ जैसे गुंडे को पसंद कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं आर्यन झलक का सिद्धार्थ के साथ होने से भी चिढ़ा हुआ था, लेकिन उसे ये तसल्ली थी कि झलक सिद्धार्थ को पसंद नहीं करती, क्योंकि झलक जानती थी कि सिद्धार्थ किस हद तक गिर सकता है। जो कुछ भी सिद्धार्थ ने झलक के साथ किया उससे आर्यन को पहले से ही अलग ही तरह की नफरत हो गई थी। अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ सकता था, इसलिए उसने पूरे तरह से समझाते हुए कहा। आर्यन की बात गहराई से सुनने के बाद मीरा बोली थी, भैया, जब आपको झलक से प्यार हुआ वो तो पूरी तरह से बदसूरत थी, लेकिन उसके बाद उसकी खूबसूरती नजर आने लगी और आपने उससे प्यार कर लिया। वही हाल मेरा है। भले ही दुनिया के नज़रों में सिद्धार्थ खुराना एक मवाली और मर्डरर वाला है, लेकिन उसका एक सॉफ्ट साइड भी है जो मैंने देखा है, और शायद मैं उसी साइड से उससे प्यार करने लगी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो आकांक्षा के साथ इंगेज्ड है, लेकिन भैया, क्या इंगेजमेंट तोड़ी नहीं जा सकती? जैसे ही मीरा ये कहा, धीरज उठ खड़े हुए और बोले,
अगर सिद्धार्थ खुराना तुम्हें पसंद करता है तो मैं उर्वशी खुराना से तुम्हारे और सिद्धार्थ के बारे में ज़रूर बात करूँगा। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई और उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगा लिया। आर्यन भी खामोश हो गया और गहरी सोच में डूब गया। उसका इरादा आज यहाँ अपने पिता से झलक से शादी के बारे में बात करने का था, लेकिन झलक ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। ये बात उसे अंदर तक हर्ट कर गई और वो अब अपने पिता से कुछ नहीं कह पाया। वहीं दूसरी ओर 2.5 से 3 घंटे बाद झलक की नींद खुली। वो तुरंत उठकर बैठ गई और अपने साइड में रखी हुई अंगूठी को देखा। दर्द होने के बावजूद उसने अंगूठी अपने हाथ में उठा लिया और सोचने लगी, मैं कितनी होशियार हूँ। एक हॉस्पिटल बेड पर बीमार पड़े होने के बावजूद मैं 20 लाख का मुनाफा कर लिया। अरे, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाय, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। ये सोचकर झलक मुस्कुराई और अपनी 32 दिखा रही थी।